ओम शांति। श्रेष्ठ तपस्वी योगी जीवन इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं, योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे बढ़कर इस संसार में कोई भाग्य नहीं है। कौन सा भाग्य उनको मिलता है? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं लेकिन परमात्मा के नैनों के पलकों में पलते हैं, भगवान के नैनों के नूर वह बनते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है। वरदानों के सागर बाबा संगम युग में हमें बहुत सारे ढेर सारे वरदान देते हैं लेकिन सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? हाँ जी, सबसे बड़ा वरदान है योगी भाव का वरदान। जिनको योगी भाव का वरदान मिलता है उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते हैं। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। ऐसे योगी भाव के वरदान में सभी वरदान आ जाते हैं। बच्चे हम सभी बाबा के हैं, वारसा हम सभी को बाबा से मिलता है लेकिन योगी बच्चे संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। वो भगवान का दिल जीत लेते हैं और भगवान सारे खजाने लुटा देते हैं। कोई कंडीशन नहीं है, जितना चाहे खजाने लूटो और लुटाओ। तो इसलिए संगम युग में ये सर्वश्रेष्ठ वरदान योगी भाव का है, तपस्वी भाव का है, वो मुझे प्राप्त करना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैंने ये वरदान बाबा से पाकर रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा हो तो हमें श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन बनाना है। कुछ घंटे के योगी नहीं बनना है, तपस्वी जीवन ही बनाना है। इसलिए निरंतर योग में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। और हम सभी की रेस किसमें है? हाँ जी, सभी रेस के घोड़े बैठे हैं ये स्पिरिचुअल रेस में। रूहानी आत्मा रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। भगवान की मेहरबानी मुझ पर हुई जो भगवान ने भी मुझे इस दौड़ में सम्मिलित होने का मौका दिया। तो रेस कौन सी है? योग की रेस हमारी है। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे वो होंगे योगी आत्माएं। इसलिए मुझे निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ करना है और उसके लिए 10 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। समय प्रति समय उन बातों पर अभ्यास आप करते रहेंगे तो गारंटी है आपका योगाभ्यास निखरता जाएगा, योग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, योग के सब्जेक्ट में आप आगे ही आगे दौड़ते रहोगे। पहली बात, योगी तपस्वी जीवन बनाना है तो उसके लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें बहुत बढ़ाना होगा। बाबा का महावाक्य है, सारे ज्ञान का सार एक ही महावाक्य है, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मौज बाप को याद करो, ये सारे ज्ञान का सार है। तो जब तक आत्मा नहीं समझते हैं तब तक बाबा की याद हमें नहीं आ सकती है। इसलिए एकांत में बैठकर हमें अशरीरी स्थिति का बहुत अभ्यास करना है। देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। इस देह के बंधन को जीरो कर देना है, बिल्कुल 100% आत्मा का भान मुझे रहे, उसके लिए लंबे समय का अशरीरी स्थिति का अभ्यास आवश्यक है। इसलिए एकांत में बैठकर विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करना है। विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं तो आत्मा के जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, सिद्धियां हैं, वो हमें अनुभव होने लगती है। आत्मा का अनुभव करने की विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर दिव्य नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना है। मैं आत्मा एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि ये सितारे तो आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये दिव्य सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। तो बुद्धि रूपी नेत्र से इस दिव्य सितारे को देखें और उसमें स्थित हो जाएं, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास को बढ़ाते जाएं, तो ये आत्म अभिमानी स्थिति हमारी निखरती जाएगी। जितना आत्मा का अभ्यास नेचुरल होगा, निरंतर होगा, सहज होगा, उतनी बाबा की याद नेचुरल होगी, निरंतर होगी और सहज होगी। दूसरी बात, निरंतर योगी बनने के लिए, निरंतर समानधारी बनने का अभ्यास हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। आत्मा का अभ्यास हमें इस देह से न्यारा करता है और समान का अभ्यास हमें इस दुनिया से न्यारा करता है। ये माया की दुनिया से हमें ऊपर ले जाता है अपनी अलौकिक दुनिया में। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर, अपनी दुनिया में स्वयं को अनुभव करते हैं, बाबा के पास अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं समान का हाथ भगवान का साथ हमें दिलाता है। इसलिए समान में हमें स्थित रहना है। आत्मा अकाल तख्त नसीन समझकर समान के सिंहासन पर भी बैठे रहना है। हम जो भी सभा में बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी सभा में साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन उस रॉयल्टी को धारण करने के लिए सतयुग त्रेता युग में आपको जो ऊंचा स्टेटस मिलना है, उस ऊंचा स्टेटस प्राप्त होते ही आपके चेहरे पर रॉयल्टी और नोबेलिटी अनुभव होने के लिए हमें अभी से ही समान के सिंहासन पर बैठने का अभ्यास बढ़ाना है। आत्मा के साथ कोई ना कोई टाइटल समान का जरूर बांधना है। हम केवल आत्माएं नहीं हैं, हम सभी को भगवान ने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है। भाई ताली तो बजाओ जरा। दुनिया में सरकार के तरफ से किसी को पद्मश्री का भारत रत्न का टाइटल मिलता है क्या? नशा चढ़ता है। सरकार ने दिया है और केवल भारत के रत्न का टाइटल दिया है। भाई हम भारत रत्न नहीं है, हम सारे विश्व के रत्न हैं। विश्व के पिता ने हमें इतना बड़ा टाइटल दिया है, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। इसलिए सिंहासन पर बैठता है राजा। तो मैं आत्मा राजा सुमान के सिंहासन पर बैठकर अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। ऐसा हमें अभ्यास बढ़ाना है। टाइटल का टॉय, दुनिया में टाई पहनते हैं तो उनकी चाल ही बदल जाती है। टप 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 करके चलते हैं। नशा ही बदलता है, चेहरा ही बदलता है। वो 2-2.5 फीट की पट्टी पहनकर टाई की। भगवान ने हमें सोमान का टाइटल रूपी टाई दिया है, वो हमें पहनना है और सेवा के क्षेत्र में जाना है। तो फिर आप देखना आपके चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक ऑटोमेटिक दिखाई देगी, अनुभव होती जाएगी। इसलिए समान में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। हम भगवान के बच्चे हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान होता है। तो जैसे डायमंड हॉल के स्टेज पर बाबा आते हैं, बाबा का चेहरा बोलता है, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है, हर कोई अनुभव करता है। ऐसे समान में हम स्थित होते हैं तो हमारा चेहरा बोलने लगता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं, साधारण आत्माएं नहीं हैं। हमारा चेहरा बोलता है, ठीक है भाई। तीसरी बात, निरंतर योग में स्थित रहने के लिए भगवान के प्रति दिल में सच्चा प्यार हमें बढ़ाते जाना है। आप कहेंगे हमारा तो प्यार बाबा से है भाई। बाबा कहते हैं हड्डी प्यार मुझे चाहिए, जिगरी प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। हम क्या करते हैं, देहधारियों के साथ में प्यार को बांटते हैं और थोड़ा बचा खुचा हम भगवान के तरफ ट्रांसफर करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा झूठा प्यार मुझे नहीं चाहिए, मैं केवल प्यार का सौदागर हूं और बहुत पक्का सौदागर हूं। जितना प्यार आप मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा। तो दादियों को हमें देखना है। दादियां जब बाप दादा से मिलती थी स्टेज पर, डायमंड हॉल के स्टेज पर, बाबा उनको बाहों में समा लेते थे और दादियां भी बाबा को बाहों में समा लेती थी। क्या था उनके पास, कोई डिग्री नहीं थी, कोई पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन खुदा भी उन पर फिदा था। क्यों? क्योंकि उनके रग रग में परमात्म प्यार था। ऐसा प्यार बाबा चाहते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी बेघर अर्थात बेगर हैं। एक किराए का मकान लेके बैठे हैं, ये भी प्रकृति से लिया है। हमारे पास केवल दिल के प्यार की पूंजी बची हुई है, हमें बाबा के पास वो सौंपना है। और प्यार ऐसी ताकत है दुनिया की, ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें कराता है। शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए ऐसी कंबाइंड स्थिति, लव में लीन होने की स्थिति को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार जोड़नी नहीं पड़ती है, जुट जाती है। जैसा प्यार वैसी तार जुट जाती है, जितना प्यार उतना देर तक हमारी बुद्धि की तार बाबा से जुटी रहती है। भाई दुनिया में लोग किससे प्यार करते हैं बोलो जरा, किससे लोग प्यार करते बोलो ना, जो बहुत सुंदर होता है ना उससे प्यार करते। भाई बाबा से बढ़कर कोई सुंदर इस दुनिया में है? सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, बाबा सुंदरता का सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाना का ठेकेदार है, कितना वो सुंदर होगा सोचो तो सही भाई, सोचो तो सही जरा। जो बहुत सुंदर चीज होती है ना उसको देखकर दिल भरता ही नहीं है, ऐसा लगता है बस देखते रहे देखते रहे देखते। योगी माना प्रभु के पागल प्रेमी, योगी माना प्रभु के दीवाने परवाने, वो कहलाते हैं योगी तपस्वी आत्माएं। चौथी बात, निरंतर योगी तपस्वी बनने के लिए हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में करना है, क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं घंटा दो घंटे के बाद वो बोर हो जाता है, क्या बिंदु 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 क्या कब तक याद करेंगे। तो ये मनुष्य की टेंडेंसी है। मैं पानीपत में गया था एक बार, ये दीदी का नाम क्या है सुनीता दीदी, आलू की सब्जी खिला रही, तीन बार आलू की सब्जी। अरे भाई आलू क्या आलू, आलू कोई बाजार में सब्जी नहीं मिल रही है अभी कोरोना से। वो एक बहन वहां बहुत होशियार थी, वो आलू के अलग अलग डिशेज बनाती रही और बड़े चाव से हम खाते रहे, बहुत मजा आ गया। पानीपत की अभी तक मैं वो विजिट भूला नहीं हूं, क्योंकि वेराइटी चाहता है इंसान। ऐसे भगवान कहते हैं यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। मुझे यूज करो, 24 घंटे में आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो सारे दिन भर में हमें बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में याद करते रहना है, फ्री बाबा को नहीं छोड़ना है, ठीक है भाई। क्योंकि ये मौका बड़ी मुश्किल से हमें सारे क्लब में एक ही बार मिलता है। कहते हैं मिले मौका तो मारो चौके में, खुश है भाई बताओ यार, मारो छक्का मैक्सिमम कमाई। तो ये मौका हमें बार बार नहीं मिलने वाला है, भगवान से प्यार करने वाला मौका केवल संगम युग में ही मिलता है, और उसमें भी हाथ ही चला गया, पूंछ बाकी है संगम की, थोड़ा सा समय बाकी है। इसलिए हमें बाबा के पीछे भागते रहना है, बाबा को विभिन्न संबंधों से अनुभव करते जाना है। कितने संबंधों से अनुभव करेंगे भाई बाबा को, हाँ जी कितने, सर्व संबंधों से, लेकिन फिर भी तो कुछ तो गिनती होगी ना, हाँ जी 10 संबंधों से, हाँ जी फटाफट लिखो। अमृत वेले आंख खुलते ही बाबा को बाप के रूप में याद करना है, जैसे सेवा केंद्र पर जाते हैं टीचर के रूप में याद करना है, जैसे सेवा केंद्र से बाहर निकलते हैं सद्गुरु के रूप में बाबा का आशीर्वाद लेना है, जैसे सेवा केंद्र पर से बाहर निकलते हैं कर्म क्षेत्र पर जाते हैं खुदा मेरा दोस्त है, चौथा है बाबा मेरा दोस्त है, पांचवा है बाबा मेरी माँ है, छठवा है बाबा मेरा बच्चा है, सातवा बाबा मेरा साजन है, आठवां बाबा मेरा रक्षक है, नौवां बाबा मेरा सर्जन है, और दसवां बाबा मेरा गाइड है, और ग्यारहवां बाबा धर्मराज भी है। मुझे छोटी मोटी भूल नहीं करना है, नहीं तो बाबा डंडा लेकर खड़ा है। तो इस अमृत वेले से रात्रि तक विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करते ही रहना है, तो हमारा योगाभ्यास धीरे 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 बढ़ता जाएगा। पांचवी बात, निरंतर योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना सीखना है। अमृत वेले नुमा शाम का योगाभ्यास तो हम सभी करते हैं, लेकिन जैसे कर्म क्षेत्र पर जाते हैं बाबा कहते हैं योग को किनारे रख देते हैं। नहीं, हमें योग और कर्म साथ में करने हैं। योग में कर्म हो, कर्म में योग हो, तो निरंतर बाबा की याद चलती रहेगी। बाबा ने कहा जो मेरे महावीर बच्चे होते हैं वो एक ही साथ दो काम करने की क्षमता रखते हैं। हम सभी महावीर बच्चे हैं, इसलिए कर्म करते हुए भी बाबा की याद मुझे करते जाना है। उसके लिए विभिन्न युक्तियों को अपनाते रहें और बहुत सुंदर बुद्धि की तार हमारी बाबा के साथ जोड़ना है। मैं मधुबन में बहुत सुंदर युक्तियों का अभ्यास करता रहा। किचन में मैं टोली बनाते समय बहुत सुंदर अभ्यास किया। बाबा मेरे सामने बैठे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता स्वरूप में, फरिश्तों की दुनिया में, और बाबा मुझे देख रहे हैं, ना देख रहे केवल, लेकिन बाबा मुझे सकास भी दे रहे हैं। तो ऐसी सुंदर बाबा की याद रहती थी, और बाबा के जो वाइब्रेशन है टोली पर भी पड़ते थे, टोली में भी शक्ति भरती थी। तो बाबा मुझे देख रहा है, ना केवल देख रहा है लेकिन सकार दे रहा है। इतनी प्रैक्टिकल युक्ति है जो आप कर्म करते हुए भी बाबा को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, या ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, मैं अवतरित फरिश्ता हूं, फरिश्तों की दुनिया से कर्म करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, ऐसा भी अभ्यास आप कर सकते हैं। बहुत युक्तियां बाबा ने बताई हैं, तो विभिन्न युक्तियों को अपनाकर हमें बाबा की याद जरूर बढ़ाना है। डबल कमाई करना है। सिंगल का जमाना पूरा हो गया। इस कंप्यूटर एज में 1 in 1 नहीं चलता है, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, अर्थात एक ही साथ दो काम करना, एक ही साथ तीन काम करना, एक ही साथ चार काम करना। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, हैं जी? वो पानीपत से हमें कोई दिल्ली लाने वाला एक भाई था, ड्राइवर बहुत होशियार था। मैंने पूछा भाई साहब कितने वर्षों से आप ड्राइविंग करते हैं, कर रहे? कहते मैं 20 साल से कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। वो ड्राइविंग करते करते वो बहन जी दीदी बैठी थी बाजू में, उनको भूख लगी, सैंडविच भी खिला रहे, वो सैंडविच भी खा रहा है, और फिर बाद में ट्रैफिक आ रहे है उसको साइड भी दे रहा है, पीछे से हॉर्न बज रहा है, पीछे से गाड़ी को भी साइड दे रहा है, और दीदी से भी बात कर, एक ही साथ 3-4 काम अच्छी तरह से कर रहा था। मैंने कहा कितना एक्सपर्ट भाई बना हुआ है ड्राइवर। तो ऐसे कर्म करते हुए भी हम एक ही साथ 3-4 काम कर सकते हैं। ये केवल अभ्यास की बात है। अभ्यास करते 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 बहुत अच्छी तरह से हम बाबा को याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। चलो बाबा को याद करेंगे। छठवीं बात, निरंतर योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाते चलें। बाबा कहते हैं स्वयं के पार्ट को और अन्य सभी आत्माओं के पार्ट को और इस संसार को साक्षी दृष्टा होकर देखो। जितना साक्षी दृष्टा बनते हैं उतना इस दुनिया से हम डिटैच रहते हैं, और जितना यहां से डिटैच रहते हैं उतना बाबा से अटैच रहते हैं, बाबा को साथी अनुभव करते जाते हैं। जब तक साक्षी नहीं तब तक बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठे हैं और इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं पहाड़ बजा रही हैं सबके पार्ट को साक्षी होकर देख रहे हैं, और जिनको मदद करनी है चाहिए मदद उनको मदद भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साक्षी होकर देख रहे हैं। ऐसे हमें भी अपने भी पार्ट को और अन्य सभी आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, डिटैच होकर देखना है। ये आत्मा अपने स्तन के द्वारा पार्ट बजा रही है, इस आत्मा का इस ड्रामा में ये पार्ट है, मेरा भी हीरो पार्ट है। तो साक्षी दुष्टा को अंदर ही अंदर हम बढ़ाते चलेंगे तो इस दुनिया से न्यारे और बाबा के प्यारे बनते जाते हैं। सातवीं बात, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हमें रखना है। चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करता है तो भी हमें उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, किसी एक भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना न हो। क्यों भाई, क्या बात है, इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हम एकांत में जब बैठते हैं बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो दो खतरनाक व्यक्ति हमारे बुद्धि में टपक पड़ते हैं, जिससे हमारा बहुत लगाव है बहुत प्यार है उसकी याद आती है, या जिसके प्रति अशुभ भावना ईर्ष्या द्वेष की भावना है वो आत्मा टपकती है। दोनों मेरे रास्ते से साफ हो, मुझे ये मेरे रास्ते में नहीं चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर युक्ति है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते चले और न्यारे प्यारे रहे। किसी के प्रति अशुभ भावना अगर मेरी है भी तो ये भी अपवित्रता की निशानी है। संपूर्ण पवित्रता का जो सर्टिफिकेट मुझे बाबा से लेना है वो एक आत्मा के कारण लटका हुआ है, मुझे नहीं मिल रहा है वो सर्टिफिकेट। तो इसलिए बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है और बड़े दिल वाले के व्यक्ति के मन में हमेशा सबके प्रति शुभ भावना पनपती रहती है, ये बड़े व्यक्ति की निशानी है, ठीक है। आठवीं बात है निरंतर योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, जिम्मेदारी का बोझ बाबा को देना है और स्वयं को एकदम हल्के अनुभव करना है। जो आत्मा हल्की रहती है वही उड़ती रहती है, बाबा के पास जाती रहती है। दो बात हमें ध्यान रखना है, या तो होगी माया से फाइट या तो मुझे मिलेगी फ्लाइट परम धाम की। अगर ये माया की दुनिया में रहेंगे तो माया से कभी कसम कशा फाइट होने की संभावना है, जिससे मेरी संकल्प शक्ति बहुत कुछ वेस्ट हो सकती है। इसलिए मुझे फाइट नहीं करना है, फ्लाइट लेना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है जब हम डबल लाइट होते हैं तभी हमें परम धाम की फ्लाइट मिलती है, बाबा के पास हम बैठे रहते हैं और बाबा की कंपनी का आनंद लेते हैं और योगी तपस्वी जीवन हमारा निखरता जाता है। भगवान के संग में मुझे संगम योग के पल जास्ती से जास्ती बिताते रहना है, इसलिए जितना बिजी उतना इजी। कहीं कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं बहुत बिजी हूं, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बिजी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने सबसे बिजी रहकर सबसे इजी रहकर कर्म योगी नंबर वन सैंपल बन के दिखाया, वो हमारा बाप है किसी और का नहीं है। अगर मेरा बाप ऐसा सैंपल बन सकता है एग्जाम्पल बन सकता है तो मुझे भी बनकर दिखाना है, ऐसा लक्ष्य हमारा होगा तो बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी को निभाते हुए भी हम स्वयं को हल्के अनुभव कर सकते हैं। ठीक है भाई। नवी बात, सदा ज्ञानी योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए योग का चार्ट लिखते रहे। बाबा मुरली में कई बार कह चुके हैं ब्राह्मण जीवन में उन्नति का साधन है योग का चार्ट लिखना, क्योंकि ये चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। क्योंकि योग का चार्ट लिखने से अपने मन और बुद्धि पर अपना अटेंशन बढ़ता जाता है, मन बुद्धि को कैसे सारे दिन भर में बिजी रखें और डिसिप्लिन में रखें ये कला हमारी बढ़ती जाती है, और सारे दिन भर में कितनी अविनाशी कमाई हमारी हो रही है ये भी हमें पता चलता है। इसलिए योग का चार्ट लिखना बहुत जरूरी है। भले कभी योग इतना अच्छा नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा नहीं भी होगा तो हमें थोड़ा महसूस होगा कि मुझे योग का चार्ट बढ़ाना है। अगर बहुत अच्छा है तो हमें खुशी होगी और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें उमंग आएगा। इसलिए योग का चार्ट लिखने से हमारा योगाभ्यास बढ़ता जाता है। सारे दिन भर में कितनी अविनाशी कमाई मेरी हो रही है इसका ज्ञान होने से बहुत उमंग उत्साह में हम सदा उड़ते रहते हैं। और दसवीं बात, योगी तपस्वी जीवन मनाने के लिए मन मना भव के मंत्र का जाप करते करते बीच बीच में मध्याजी भाव के मंत्र का जाप भी हमें करते रहना है। क्योंकि बाबा हमें इतना बड़ा लड्डू दे रहा है, स्वर्ग की एक के जन्मों की बादशाही दे रहे हैं। कोई भी काम हम जब करते हैं तो काम करने के लिए पहले सोचते हैं मुझे इससे मिलेगा क्या। दीदी ने आपको पूछा ज्ञान सरोवर में बट्टिया चलोगे, आप सोचने लगे वहां जाने से मुझे मिलेगा क्या, वहां जाने से मुझे योग के बहुत सुंदर अनुभव होंगे, बहुत मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, ये आपने सोचा तब आपने टिकट निकाला और यहां पहुंचे। तो कभी कभी मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए बोर होना लगता है, उसमें हमेशा रुचि हमारी इंटरेस्ट बढ़ता रहे उसके लिए ये मध्याजी भाव का लड्डू हमें वर्षे के रूप में याद करते रहना है। मध्याजी भाव का मंत्र का जाप करेंगे तो हमें सतयुग में इतना ऊंचा स्टेटस मिलेगा, तो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे तो बहुत योगाभ्यास में हमें मजा आएगा। ठीक है भाई। तो योगाभ्यास बढ़ने से तीन फायदे हमें होते हैं। योगाभ्यास बढ़ने से पहला फायदा है हमारे पास शक्तियों का स्टॉक बहुत बढ़ता जाएगा और जिन आत्माओं के पास शक्तियों का स्टॉक बहुत होगा उन आत्माओं को मनसा सेवा करने का गोल्डन चांस भविष्य में बहुत मिलेगा। ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ, योगाभ्यास में हमारा नंबर आगे होगा और हम प्राइज विनर बनते हैं। इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है, विनर बनना है। तो योगाभ्यास में हम प्राइज विनर बनते हैं। और तीसरा लाभ है, बाबा कहते हैं इस संसार में परमात्मा की प्रत्यक्षता कैसी होती है, क्योंकि परमात्मा भी गुप्त है, उनकी शक्तियां भी गुप्त है। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता योगी आत्माओं के द्वारा इस संसार में होती है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो सुंदर रचना को देखकर दुनिया वालों का ध्यान परमात्मा के तरफ जाएगा और परमात्मा की प्रत्यक्षता में उनका विशेष पाठ होगा, उनकी अहम भूमिका होगी, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छा योगी भव का वरदान हमें लेना है, है ना भाई। अभी आज मैंने सुना है शाम के लिए आपको बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, बाप दादा से मिलन मनाने का। फिर देखो बाबा के घर में जो बाबा के बच्चे आते हैं, ऊपर बैठकर वो देखता है मेरे लाल मेरे घर में पहुंचे हुए हैं। भी उनकी खातरी मुझे करना है। खातरी कोई केवल खिला पिला कर नहीं करते हैं, उनको बहुत सुंदर गहन दिव्य अनुभव करा के बाबा खातरी कराते हैं। तो आज शाम को ऐसा सुंदर अनुभव करना है कि बाबा परम धाम छोड़कर आपके मुलाकात के लिए इस हॉल में आए हैं और आपके सामने बैठे हैं और बाप दादा आपकी महान आत्मा को नजर से निहाल कर रहे हैं, बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं और आप में शक्तियां भर रहे हैं। ऐसा आपको सुंदर अनुभव बाबा कराएंगे, लेकिन अभी से ही उसके लिए अपने को प्रिपेयर करना है। अभी से ही अशरीरी स्थिति का अभ्यास आपको बढ़ाना है। जितना अशरीरी स्थिति का, गहन स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अनुभव आप बढ़ाते जाएंगे, उस मिलन में 100% गारंटी मैं देता हूँ, ऐसा अभ्यास ऐसा अनुभव होगा कि बाबा वतन से खास आपके लिए आए हैं और आपको मिलन मनाकर शक्तियां भर के बाबा चले भी गए वापस। ऐसा अनुभव बाबा आपको कराएंगे। मैं कोरोना के पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां 100 युवाओं के लिए रिट्रीट रखी थी और मुझे वो रिट्रीट को कंडक्ट करने के लिए बुलाया था। तो रिट्रीट में हमने एक दिन अमृत वेले 4 बजे से ये प्रोग्राम शुरू किया। एक एक भाई एक एक बहन बाबा के सामने आकर बैठते थे और इतना सुंदर अनुभव करते थे, बाबा से वरदान भी लेते थे। सबका चेहरा चमकता था, सबके चेहरे एकदम खुशी में झूमने लगते थे। ऐसा अनुभव हर एक बाबा के बच्चे ने किया है, ऐसा अनुभव आपको भी बाबा आज कराएंगे, ये गारंटी है। बाबा कहते परम धाम में मैं अकेला होता हूं ना, मुझे बोर होता है, मुझे बच्चों से मिलने के लिए मजा आता है, आनंद आता है। इसलिए इतने बड़े बाबा के महान आत्माएं विशेष बच्चे पहुंचे हुए है, तो बाबा जरूर खातरी करेंगे ना भाई। ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना, बाबा के पास आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो एक शर्त है, अनुभव। जितना स्वयं को अनु समझते हैं, बिंदु समझते हैं, उतना अलौकिक अनुभव की खान हमें मिलती है, अलौकिक अनुभव की वर्षा हम पर होती है। तो हम भाई बहन नहीं समझे स्वयं को, मैं अति सूक्ष्म अनु हूँ, बिंदु हूँ, स्टार हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, इस अनुभूति में आप खोएंगे तो आपको बहुत अनुभव बाबा कराएंगे। ओम शांति। अभी 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति हम करने जा रहे हैं जो यादगार बन जाए। सभी एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ये बंधन भी हटा दो जरा, ये भी बंधन हटा दो, पर्स, डायरी, पेन सब कुछ हटा दो, एकदम आजाद पंछी बन के बैठो और बाबा के पास अपनी दुनिया में खो जाएंगे सभी। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जग मग रही हूँ, मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारो फैल रही है। मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहो सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं आत्म ज्योति देह रूपी मोमबत्ती से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ती हुई फरिश्तों की दुनिया की ओर जा रही हूँ। इन 5 तत्वों से पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मौज आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश का उज्जला शरीर, दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर धारण किया है। कितना हल्का फुल्का ड्रेस यह, फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि द्वारा असीम आनंद और अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती टपक रहे हैं। सकिल दे बच्चे, मैंने अपना खोया हुआ लाल 5,000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मेरे लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हो, कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह, चारों सुनहरी लाल हिला। दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा, शांति धाम। ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मौज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से देख रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात मौज आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइटर खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्म ज्योति सूरज मुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को संपूर्ण एकाग्रता से देख रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ, तपती ही जा रही हूँ, तपो बल को जमा कर रही हूँ। सचमुच मुझे तपस्वी जीवन अनुभव हो रहा है। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महाज्योति परम ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से मंगल मिलन मना रही हूँ। महा मिलन का आनंद ले रही हूँ। बाबा मुझे आज जरूर मिलने आपको आना है, परम धाम छोड़कर मुझे मिलने आना है। हाँ बच्चे जरूर आऊंगा और मिध मधुर मिलन द्वारा आपको शक्तियों से भरपूर वरदानों से भरपूर करूंगा, ये मेरा वायदा है बच्चे। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मोज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों का प्रकाश, शक्तियों की किरणें चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ज्योति सागर शिव पिता की मैं संतान आत्म ज्योति हूँ। ओम शांति, ओम शांति।